हरे कृष्णा। इस संसार में और बल्कि सारे सृष्टि में, भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि, दोनों में तीन ही सत्य हैं, भगवान, भगवान के भक्त और उनके बीच में संबंध अर्थात भक्ति। तो ये तीन चीजें, ये तीन विषय सबसे महत्वपूर्ण हैं मनुष्य समाज में चर्चा करने के लिए। इन तीनों चीजों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु महत्व नहीं रखती। अगर हमने इन तीन चीजों को जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है, असम्मूढ़ो बिना संशय के, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, कि मैं पुरुषोत्तम हूं, साधारण कोई पुरुष नहीं, मैं पुरुषोत्तम भगवान हूं, तो वो मेरे भजन में लग जाता है। सर्वभावेन सर्ववित, सर्ववित मतलब वो परम ज्ञानी कहलाता है। हमें समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को जान लिया है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा विद्वान है। हालांकि उसे कोई भौतिक शिक्षा न मिली हो, उसमें सातवीं पास भी न किया हो शायद, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण को जानता है तो बड़े बड़े अभक्त पीएचडी इनसे भी बड़ा है, क्योंकि उसने सबसे महत्वपूर्ण विषय अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है, जान लिया है। तो भगवान के भक्त भी इन्हीं तीन विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि यही तीन चीजें चर्चा करने योग्य हैं, बाकी सब समय का व्यर्थ गंवाना हो जाता है। थोड़े कई हफ्ते पहले हम भगवान के विशेष भक्त पांडवों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान श्री कृष्ण के हैं प्रह्लाद, लेकिन प्रह्लाद से भी श्रेष्ठ हैं पांडव, पांडव से भी श्रेष्ठ हैं यदु, यदुकुल के सदस्य, यदुकुल के सदस्यों में से सबसे श्रेष्ठ हैं उद्धव, उद्धव से भी श्रेष्ठ भक्त हैं वृंदावन के निवासी, वृंदावन के निवासियों में सबसे श्रेष्ठ हैं गोपियां, और गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इस तरह से भक्त तो असंख्य हैं। तो पिछली बार हम पांडवों के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज थोड़ा बहुत यादव कुल या यदुकुल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक पांडवों के संग में रहे हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर महाराज के निवेदन पर, तो वो सोच रहे थे कि अभी द्वारका के मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे साथी हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैं इतना समय अभी तक लौट के क्यों नहीं आया हूं। तो हालांकि भगवान बहुत खुश थे पांडवों के बीच में, लेकिन इस वक्त वो द्वारकाधीश, द्वारका के राजा की लीला कर रहे थे, इसलिए उनको द्वारका लौट कर जाना आवश्यक था। तो उन्होंने ठीक समझा कि वो द्वारका के लिए निकल पड़े। तो द्वारका की ओर चलते चलते अनेक प्रांतों से गुजरे, जहां से भी भ्रमण करते जा रहे थे वहां पे हर शाम को रुक जाते और अपने सारे पूजा पाठ क्रियाएं करते। अब सवाल यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, तो एक साधारण व्यक्ति को किस तरह से धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए, ये भगवान ने अपने स्वयं उनके जीवन से दिखलाया। तो वो अपनी पूजा पाठ करते थे संध्या के समय और कभी भी चूकते नहीं थे। इस तरह से उन्होंने मनुष्य जाति के लिए एक उदाहरण, एक आदर्श ठहराया है कि हमें किस तरह से अपने पूजा पाठ में, अपनी साधना में कैसे हमें बहुत सख्त रहना चाहिए, बहुत सिंसियर रहना चाहिए। कभी कभी हमारे भक्त कहते हैं कि आज कल ये तकलीफ हुई, हमने माला नहीं की, इसलिए हम किताब पढ़ नहीं सकते, ये समस्या है, वो समस्या है, हम 16 माला नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हालांकि सफर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, फिर भी उन्होंने समय निकालकर अपनी सारी यात्रा को रोक दी। सारे हाथी घोड़े सैनिक सबको रुका दिया, अभी मुझे पूजा पाठ करना है। उसी तरह से हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जप को भी हमें उसी तरह से करना है। चाहे दुनिया रुक जाए, सूरज अपने पथ में रुक जाए, लेकिन अपना माला चूकना नहीं चाहिए, जिस तरह से कृष्ण भगवान ने किया स्वयं। तो आगे चलते चलते आखिर कृष्ण भगवान द्वारका के समीप पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और जैसे ही ये शंख की ध्वनि द्वारका के निवासियों ने सुनी तो तुरंत उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो उनका प्राण फिर से लौटकर आ गया है शरीर में, क्योंकि यदुकुल के निवासी भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, नित्य पार्षद थे भगवान के, भगवान की लीला में साथ देने के लिए आए थे भगवान के धाम से, और कई देवता थे जो देवलोक से बुलाए गए थे भगवान श्री कृष्ण की लीला में साथ देने के लिए। तो शंख की ध्वनि सुनने के तुरंत बाद उन्हें ऐसा लगा कि फिर से अभी जान आ गई शरीर में, अब तक हम ऐसे थे कि मानो बहुत उदास, जैसे कि शरीर में जान नहीं, लेकिन शंख की ध्वनि सुनने पर उदास बिल्कुल वो नहीं रहे, उनका मन प्रफुल्लित हो उठा और तुरंत वो मन ही मन सोचने लगे कि अभी हमें दौड़ के जाना चाहिए, किस तरह से श्री कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। बहुत लंबे समय से श्री कृष्ण द्वारका से बाहर गए हुए थे और द्वारका के निवासी सोच रहे थे कि समय बीतते जा रहा है और कृष्ण लौटकर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत उनको विरह की भावना महसूस हो रही थी, क्योंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करता है कि वो थोड़े समय के लिए भी उनसे अलग होना नहीं चाहता है। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधवो हृदयो मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, मैं साधु के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है, मैं साधु के अलावा भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता और वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो इस तरह से आध्यात्मिक स्तर पे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हमेशा श्री कृष्ण के साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रत्यक्ष या साक्षात सामीप्य भी प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। तो इस तरह से द्वारका के निवासी सोच रहे थे बहुत समय हो गया और कृष्ण भगवान कब आएंगे, हर रोज इंतजार करते थे, जिस तरह से वृंदावन के निवासी ब्रजवासी भी इंतजार करते थे भगवान श्री कृष्ण का। जब श्री कृष्ण मथुरा द्वारका छोड़कर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो उन्होंने वायदा किया था कि मैं जल्दी से लौटकर आऊंगा, तो सारे ब्रजवासीगण इसी आशा के ऊपर जी रहे थे कि एक दिन श्री कृष्ण लौटकर आएंगे, और हर दिन सुबह को उठते थे आज तक अभी कृष्ण नहीं आए, और शाम तक दूर मथुरा के रास्ते में देखते रहते थे कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहे। तो ऐसे उनके दिन बीतते जा रहे थे। तो इसी तरह से द्वारका के निवासी भी हस्तिनापुर के मार्ग की ओर देखते थे कि क्या कृष्ण भगवान आए तो नहीं। इस तरह से उनके दिन वो काट रहे थे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नाम का शंख फिर से अपने कर कमलों में उठाया और फिर से अपने मुखारविंद का स्पर्श करा के उन्होंने फिर से शंख को बजाया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जहां श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श हुआ उस शंख से, तो ऐसे लग रहा था कि शंख लाल लाल हो गया है उस इलाके में, और ऐसे लग रहा था कि मानो कोई एक सफेद हंस, राजहंस, किसी लाल रंग के कमल के डालियों में या उनके खंड में अपना जो है वो भीतर जाने का प्रयास कर रहा है। कभी कभी भगवान के भक्तों को हंस कहते हैं या परम हंस कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विवेक बुद्धि होती है जिससे कि वो सत और असत का भेदभाव कर सके, जिससे कि वो ये जान सके कि भगवान की सेवा के लिए उचित क्या है, नहीं क्या है, उपयुक्त क्या है और क्या नहीं है। जिस तरह से हंस की खूबी ये होती है कि दूध और पानी के मिश्रण से वो केवल दूध को निकाल सकता है और पानी को फेंक देता है। हाँ, आजकल के समाज जमाने में हमारे समाज में क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दूध पानी के मिश्रण से पानी निकालते हैं, दूध फेंक देते हैं, अर्थात असत्य को ग्रहण करते हैं, सत्य को फेंक देते हैं। लेकिन परमहंस कैसे होते हैं, केवल सत्य को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से कई संतों ने ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं भी की हैं, जैसे महाराज कुलशेखर, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है जो प्रभुपाद जी अक्सर गाया करते थे, जो कि मुकुंदमाला स्तोत्र नाम के ग्रंथ से है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन एक राजहंस के समान है और आपके पद पंकज, आपके चरण कमल, ये कमल के पुष्पों के बराबर है। और केवल कमल के पुष्प नहीं, पंजर, पंजर मतलब उनकी जाली, कमल पुष्प ये एक जाली हो जाती है, उसके बराबर है। तो मेरा हंस रूपी मन आपके कमल रूपी चरणों में अभी आश्रय लेना चाहता है, तो कृपा करके अभी ही इन्हें स्वीकार कर दीजिए, क्योंकि प्राण प्रयाण समय, जब मृत्यु के समय आएगा, प्राण त्यागने का समय आएगा, जब कफ वात और पित्त तीनों कंठ में इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस समय आपका स्मरण करना मेरे लिए प्राय असंभव हो जाएगा। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये सुंदर हंस जैसे लग रहे थे, सफेद हंस जो कि लाल रंग के कमल में रमण कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख को बजाया और बजाते ही सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मूर्तिमान भय भी उस ध्वनि से भयभीत हो गए। अभी वैसे देखा जाए तो भगवान की वजह से ही संसार में सब कुछ चल रहा है। उपनिषदों में बताया गया है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निचंद्रश्च मृत्युः पंचम धावतः। भगवान के डर से ही वायु चलती है, पवन। भगवान के डर से सूरज उष्णता और प्रकाश देती है। भगवान के डर से अग्नि प्रज्वलित रूप से जलती है, चंद्रमा अपना प्रकाश देती है और मृत्यु सबका पीछा करती है। तो भगवान के डर से सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आजकल यहां समाज में लोग इतने पतित हो गए, भगवान से भी डरते नहीं है, वो अभी बात ये हो गई है। एक अखबार है, हमने देखा बंगाल में, जिनका विज्ञापन था, बड़े बड़े बोर्ड पे उन्होंने अपना विज्ञापन लिखा है कि भगवान के सिवाय हम किसी से भी डरते नहीं हैं। कम से कम उतनी तो भावना है, लेकिन समाज भर में आजकल वो भी लोगों ने करना छोड़ दिया है। हालांकि भगवान से डरना और इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करना ये निम्न श्रेणी की भक्ति है, भक्ति नहीं कहलाती बल्कि भक्ति की का आभास है, शुरुआत है। लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होने से धीरे धीरे से प्रेम जागृत हो जाता है। तो इस तरह से मूर्तिमान भय भी वो भगवान श्री कृष्ण से डरता है और भगवान श्री कृष्ण और उनके शंख के ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के जो भी सामग्री हैं वो सब एक है, सब आध्यात्मिक है। तो भगवान के शंख की ध्वनि सुनने से सारे द्वारका निवासियों के हृदय से जो भी शोक था, जो भी उदासी था, वो सब मिट गया बिल्कुल, और सब बिल्कुल प्रसन्न चित्त से बाहर द्वारका के शहर के गेट द्वार के पास आने लगे। इधर हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी इसी तरह से शंख दोनों दल बजा रहे थे। बताया जाता है कि उस काल में युद्ध होने के पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती थी तो दोनों एक अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से शंख बजाते थे। और इस तरह से दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास में गए और उन्होंने कहा कि हे आचार्य, अभी देखिए यहां पर पांडवों की सेना में कितने महान महान योद्धा हैं, जैसे कि भीम है, अर्जुन है, युधान है, चेकितान, काशीराज, शैब्य, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, ध्रुपद इत्यादि। लेकिन इनकी शक्ति सीमित है क्योंकि ये भीम के संरक्षण में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ति प्राय असीमित है क्योंकि हमारे सेना में भीष्म है। और आप जैसे महान योद्धा हैं द्रोणाचार्य, और फिर हैं कृपाचार्य, अश्वत्थाम, कर्ण, ऐसे महान महान योद्धा हैं, तो इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर दुर्योधन ने सारे उनके सैनिकों को, सेनापतियों को कहा कि अभी कृपा करके आप भीष्म का साथ दें। तो उस समय भीष्म देव ने अपना शंख बजाया और जैसे ही शंख बजाया, सिंहनादम विनद्योच्चैहि शंखम दद्मौ प्रतापवान, ऐसे सिंहनाद, जैसे एक सिंह का जो गर्जन होता है, ऐसे उन्होंने आवाज की। और इस आवाज को सुनकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, उनको उनका हौसला बढ़ गया। और साथ साथ में कौरव सेना में जो और अन्य सेना सैनिक थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख वगैरह बजाने शुरू कर दिए, बाजे, भेर इत्यादि। और दुर्योधन ने सोचा कि अभी हमारी जीत निश्चित है। और उधर कृष्ण भगवान ने फिर अपना पांचजन्य शंख बजाना आरंभ किया। पांचजन्य ऋषि केशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम शंखम दद्मो प्रताप भीम कर्म वृकोदरः। पौंड्रम ये भीम का शंख है, वृकोदर भीम का नाम है, और अर्जुन का शंख है देवदत्त। इस तरह से तीनों ने शंख बजाया अपना अपना। कृष्ण भगवान ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, और भीम ने अपना शंख पौंड बजाया। उधर पांडवों ने, जैसे युधिष्ठिर राजा ने अनंत विजयम नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने उनका शंख बजाया, जिनका नाम है सुघोष और मणिपुष्पका। और जब ये सारे शंखों की ध्वनि गूंजने लगी तो ऐसे लग रहा था कि सारे आकाश से पार होकर और कई ब्रह्मांड के पार आवाज ध्वनि चली जा रही है। दिव्यो शंखो प्रदत्मतो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख जो है वो दिव्य थे, इसलिए दिव्यो शंखो शब्द का प्रयोग करते हैं संजय। और क्योंकि ये दिव्य ध्वनि थी तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि सारे कौरव सेना का हृदय टूट गया, उनका हौसला बिल्कुल वो खो बैठे, क्योंकि ये ध्वनि में इतनी शक्ति थी। उसी तरह से जो भक्तों का प्रचार होता है, क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण की वाणी होती है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद भागवत इत्यादि, वो भगवान के शंख के ध्वनि से अभिन्न है। इसलिए जब भगवान के भक्त भी इसी ध्वनि को दोहराते हैं तो उस शब्द में भी वही शक्ति है जो कि भगवान के शंख के ध्वनि में है। इसलिए भक्तों का हौसला बढ़ जाता है। जिस तरह से अर्जुन और कृष्ण के शंख बजाने से पांडव सेना का हौसला बढ़ गया, लेकिन ऐसे ही ध्वनि सुनकर जो अभक्त होते हैं वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं, उनका हृदय टूट जाता है। जब मध्वाचार्य जगह जगह जाते थे तो बहुत जोर से प्रचार करते थे, खास करके जो लोग निराकारवाद का प्रचार करते थे, और अपने जोरदार प्रचार से वो बिल्कुल अच्छी तरह से भक्ति का सिद्धांत स्थापित करते थे। तो जब भी ये निराकारवादी मध्वाचार्य को देखते थे तो किसी न किसी बहाने वहां से चले जाते थे। तो इस तरह से जो भक्त लोग भगवान के दिव्य गुणों का और दिव्य संदेश का प्रचार करते हैं वो भी इसी तरह से दिव्य शंख बजा रहे हैं भगवान का। तो पांडवों का हौसला बिल्कुल बढ़ गया, और उधर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों का जो हौसला है वो बिल्कुल टूट गया। तो यहां द्वारका में तो सब भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य शंख की ध्वनि सुनी तो बिल्कुल दौड़ते हुए आए बाहर, और हरेक ने प्रणाम किया। वो उन्होंने ऐसे स्वागत किया कृष्ण का कि जैसे एक बालक अपने पिता का या माता का स्वागत करता है जो बहुत दिन के बाद उनको देखता है। और फिर हरेक द्वारका के निवासी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए उपहार लाए थे। अभी वैसे देखा जाए तो उपहार की क्या आवश्यकता है भगवान को, क्योंकि भगवान ही तो सभी को सब कुछ दे रहे हैं। सभी कुछ जो हमें मिल रहा है वो तो उपहार ही है भगवान का, लेकिन फिर भी भगवान उस उपहार के भीतर जो प्रेम है उसको स्वीकार करना चाहते हैं। जिस तरह से जो सूर्य देव की उपासना करता है तो वो दीप लेकर सूर्य देव को अर्पण करता है। जो भी अग्नि है सारे ब्रह्मांड में वो सूर्य देव से ही उत्पन्न होती है, सूर्य देव की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। लेकिन सूर्य देव का भक्त जो होता है वो सूर्य देव से उत्पन्न होने वाली अग्नि को सूर्य देव को ही लौटा रहा है। इसमें सूर्य देव का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन सूर्य देव इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये प्रेम से एक सेवा भावना से अर्पित किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से गंगा जल को हम गंगा में अर्पण करते हैं तो गंगा देवी भी इसे स्वीकार करती है। ठीक उसी तरह से जब द्वारका के निवासियों ने उनका गुणगान किया और उनको सुंदर सुंदर उपहार प्रस्तुत किए तो भगवान ने इस प्रेम को स्वीकार किया। उस उपहार के पीछे जो प्रेम था वो उनको बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। वैसे गुणगान करने के लिए तो कौन योग्य है, भगवान के गुणगान करते करते अनंत शेष के करोड़ों साल बीत गए, अभी तक कार्य समाप्त नहीं हुआ। जिस तरह से एक छोटे बच्चे की तोतली बोली से माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, और जब बच्चे माता पिता को बुलाते हैं अपनी तोतली आवाज में तो दौड़कर माता पिता आते हैं और सोचते हैं कि सुंदर सुंदर कविता भी से भी ज्यादा मधुर ये है। अगर कोई उनको सुंदर कविता भी सुनाने जाए तो उनको लगे कि ये इतना सुंदर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे की पुकार जो है, वो जो मम्मी डैडी जो बुला रहा है, ये ज्यादा सुंदर है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के प्रार्थनाओं को, गुणगान को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। हालांकि उनके भक्त शायद अयोग्य हो, शायद अशिक्षित हो, अच्छी तरह से व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अच्छे ढंग से स्तुति न कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी इन प्रार्थनाओं में अलग अलग दृष्टि से कोई भी त्रुटियां भी क्यों न हो, भगवान उसी ढंग से इस गुणगान को स्वीकार करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों की तोतली बोली को। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो अपने भक्तों का गुणगान स्वीकार करते हैं और इस तरह से भक्तों का उद्धार होता है। और जब द्वारका के निवासी प्रार्थना करने लगे, उनको उपहार दिया, तो भगवान ने ये उपहार स्वीकार किए, और उधर उन्होंने प्रार्थना करना अर्पण कर दिया, करना आरंभ कर दिया। वो कहने लगे कि हे प्रभु, अभी आप इतने समय से यहां से निकल गए हैं तो हमारे हृदय में विरह की भावना बहुत तेज थी। अभी हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं और साक्षात आमने सामने हम आपको देख पा रहे हैं, और ये दृश्य देवी देवताओं को भी स्वर्ग लोक में नहीं हो पाता है। और ये वास्तव में सही बात है, क्योंकि जब देवी देवताओं को भगवान का दर्शन करना होता है या कोई संदेश भगवान को पहुंचाना होता है, उनको कोई कष्ट होता है, तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको लेकर श्वेत द्वीप में क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। वहां पर वो बैठते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में स्थित हो जाते हैं और अंदर ही अंदर से उनका टेलीफोन कनेक्शन जम जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु से, जो कि अनंत शेष के ऊपर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होते हैं। और केवल ब्रह्मा जी को संदेश मिल जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु से, उनकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। तो सारे देवी देवता, यहां तक ब्रह्मा जी भी प्रत्यक्ष भगवान को देख नहीं सकते, केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही देख सकते हैं, जैसे कि द्वारका के निवासी। तो द्वारका के निवासी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आपको हमारे सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये हमारी आंखों की पूर्णता है। जब आप नहीं थे हमारे बीच तो हमें ऐसे लग रहा था कि हर एक क्षण एक युग के बराबर है, और हमारी आंखें बिल्कुल व्यर्थ थी, मानो कि वो आंखें जबकि सूरज न हो। अब देखिए, हमारी आंखें कब काम करती हैं? जब कोई रोशनी हो तब ना, और रोशनी नहीं हो कोई, बिल्कुल अगर अंधकार हो, न सूरज की रोशनी हो, न बल्ब की, ट्यूबलाइट की, मोमबत्ती की, किसी भी वस्तु की अगर किसी भी रोशनी न हो, तो क्या ये आंखें किसी काम की होंगी? नहीं, व्यर्थ है। कई बार कई लोग घमंड से कहते हैं, भगवान है ये क्या सबूत है, क्या हमें भगवान दिखा सकते हैं? लेकिन हमारे इन आंखों से भगवान को देखने की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है? अगर हम लाइट बंद कर देते हैं, सूरज अगर नहीं रह जाता, तो हमारे आंखों के सामने हमारे हाथ को भी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये आंखों की क्या कीमत है जब सूरज नहीं है, जब रोशनी नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो द्वारका के निवासी इसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से जब सूरज नहीं होता तो आंखों की कीमत नहीं होती है, तो उसी तरह से जब आपका दर्शन नहीं होता, जब आप हमारे बीच में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो फिर हमारे आंखों की भी कोई कीमत नहीं है, हमारे आंखें भी बिल्कुल व्यर्थ थी। और ऐसे लग रहा था कि बहुत लंबा समय बीत गया। ये भक्ति भाव में ऐसे ही प्रतीत होता है भक्त को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टकम स्तुति में प्रार्थना करते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि हे गोविंद, आपके विरह में एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है, और मूसलधार अश्रु की धारा बह रही है मेरे आंखों से। तो इस तरह से ये शुद्ध भक्ति या प्रेम का लक्षण है। तो इसी तरह की प्रार्थनाएं हम जगह जगह शास्त्रों में देख रहे हैं। उसी तरह से गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं, और वो कहते हैं, अततियत भवान अहनेकाननम त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखम जते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। इस सुंदर प्रार्थना का अर्थ है, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, अटति यद भवान, हे कृष्ण, जब आप जाते हो, अटति अहनी दिन के समय, कहां जाते हो? कानन, आप वन में जाते हो गवों को चराने के लिए, तो हमें लगता है त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि अर्थात एक क्षण से भी जो कम समय होता है वो हमें युग के बराबर प्रतीत होता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, और हम आपके सुंदर मुखारविंद के ऊपर जो घुंघराले बाल हैं वो हमारे मन में आते हैं, उसका स्मरण हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि जिन्होंने ये आंखों के ऊपर पलक बनाई है वो कितने मूर्ख हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का तिरस्कार कर रहे, निंदा कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी जड़ व्यक्ति हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे हमारी आंखें बनाई कि पलके हैं बार बार आंखें बंद करनी पड़ती हैं। वैसे ये आंखों का उद्देश्य क्या है कि हमें केवल 24 घंटे आपका दर्शन करना है, 24 घंटे इन आंखों को खोलकर हमें देखना है आपको, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आंखें बार बार बंद होती हैं। आंखों का उद्देश्य है आपका दर्शन करना, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसे आंखें नहीं बनाई जिससे हम आपका दर्शन 24 घंटे कर सके। तो उनको मालूम ही नहीं सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, बिल्कुल मूर्ख है वो। तो भक्ति भावना में गोपियां ऐसे बोल रही हैं। तो इस तरह से इसी तरह की भावनाएं जगह जगह हमें दिखाई पड़ती हैं। गोपियां भी यही प्रार्थना, उसी तरह से यहां यदुकुल के निवासी भी बोल रहे हैं कि हमारे आंखें आपके बिना बिल्कुल व्यर्थ हैं, और आप जब नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एक युग बीत रहा है। तो इस तरह से आप जगह जगह लंबे लंबे समय के लिए मत जाइए, आप बहुत लंबे टूर के लिए चले जाते हो और यहां पे हमारा जीवन बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है, तो कृपा करके वहां पर आप मत जाएं, जाना है तो थोड़े समय के लिए जाकर जल्दी से चले आए। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे। तो यदुकुल के निवासी यादव इतने शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के कि उनके हृदय में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी, कोई भी स्वार्थ नहीं था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया तो धूमधाम से सारे द्वारका शहर में तोरण, सुंदर द्वार इत्यादि सब रचाए गए थे, और द्वारका शहर बिल्कुल सुंदर लग रहा था। सारे शहर को धो डाला था, सारे राजमार्गों को। जिस तरह से जब प्रभु रामचंद्र जी लंका से लौट कर आ रहे थे तो अयोध्या के निवासियों ने कैसे अयोध्या को बिल्कुल सजा के रखा था श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए, उसी तरह से द्वारका के निवासियों ने तुरंत जल्दी जल्दी से द्वारका धाम को सजा लिया ताकि श्री कृष्ण का अच्छी तरह से स्वागत हो जाए। तो हम देखते हैं कि द्वारका के निवासी कितना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण राजा थे द्वारका के, तो राजा के प्रति इतना प्रेम होना प्रजा के हृदय में ये बहुत विचित्र बात है आजकल की दृष्टि से हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस काल में कैसे वातावरण हुआ होगा। पांडव कृष्ण भी सारे भक्तों के आंखों के केंद्र थे, केवल कृष्ण के लिए ही सभी लोग जी रहे थे। उसी तरह से हमारे भक्तों के समाज में भी श्री कृष्ण को ही केंद्र में बनाकर हमें जीना चाहिए। इस तरह से अगर हम रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, भक्तों के बीच में भी आनंद रहेगा, और भगवान की भक्ति करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। भगवान भक्तों की अलग अलग तरह से परीक्षा करेंगे, जिस तरह से उन्होंने पांडवों का किया, जिस तरह से उन्होंने ब्रजवासियों का किया, जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद का किया। तो हमें जो भगवान तकलीफ देंगे कम से कम उतना नहीं होगा जिनको जितना कि इन भक्तों को दिया था। कम से कम हमें तो कोई आग में नहीं फेंक रहा है, कम से कम हमें कोई ऊंचे पहाड़ से नीचे नहीं फेंक रहा है, कम से कम हमें बांध कर कोई विष पिलाकर नदी में फेंक नहीं रहा है, कम से कम हमारे घर को कोई जलाकर, हम जब सो रहे हैं हमारे घर को जलाने का तो प्रयास नहीं कर रहा है। तो जब हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट भी आते हैं तो ये कौन सी बड़ी बातें हैं। सत्यनुकंपाम सुषमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, ये अपने ही पाप है लेकिन ये भगवान की कृपा है कि वो हमारे हृदय में ऐसे हमारे हृदय में भी भावना होनी चाहिए। यदुकुल के निवासी ये सब भगवान के नित्य पार्षद थे, लेकिन जब भौतिक संसार में आए ये भी साधारण व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण के बीच में और उनके बीच में भी जो व्यवहार चलता था हमें यह साधारण नहीं समझना चाहिए। उधर जब वृंदावन छोड़कर भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो वहां उन्होंने अपना भाव बदल दिया, क्योंकि मथुरा नरेश कृष्ण और वृंदावन नरेश कृष्ण एक भी हैं और अलग भी हैं, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण ने राजा का स्वरूप स्वीकार किया, वहां पर वो क्षत्रिय बने। जब तक वृंदावन में थे वो वैश्य थे, वैश्य थे मतलब वैश्य की भूमिका निभा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ना तो वैश्य है ना क्षत्रिय ना ब्राह्मण ना कोई, वो तो भगवान ही होते हैं। तो वृंदावन में उन्होंने वैश्य की लीला की, गायों को चराया, ग्वाल बालों के संग इधर उधर घूमे और गोबर गौमूत्र में वो बहुत खेलते थे और गाय का दूध का पान करते थे, माखन चुराया करते थे। लेकिन जब मथुरा में आए तो उस समय उनकी क्षत्रिय लीला आरंभ हो गई। तो मथुरा नरेश फिर आगे चल के द्वारकाधीश बने। तो ये द्वारकाधीश और श्याम सुंदर वृंदावन के, ये एक व्यक्ति हैं या अलग व्यक्ति हैं? हैं वैसे एक व्यक्ति लेकिन फिर भी अलग हैं, क्योंकि द्वारका में आकर उन्होंने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जो कि गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे साथ में ऐसे हों जो कि मोर पंख धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, बांसुरी बजाने वाले। लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण कोई बांसुरी ज्यादा नहीं बजाते थे, वो मोर पंख ज्यादा धारण नहीं करते थे, करते भी थे लेकिन कोई खास उसमें नहीं थी, क्योंकि वो बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली वस्त्र वगैरह पहनते थे। लेकिन फिर भी द्वारका के निवासी भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनकी भावना भले अलग हुई होगी। तो इस तरह से भगवान की भक्ति अलग अलग भावनाओं में की जाती है, अलग अलग रुचि मिलती है अलग अलग भक्तों को। तो जिस तरह से पांडवों का प्रेम था कृष्ण भगवान के प्रति, उसी तरह से यादवों का प्रेम भी था। तो हमें इन महान भक्तों के कहानियां सुननी चाहिए, किस तरह से वो जीते थे, किस तरह से भगवान से प्रेम करते थे, किस तरह से भगवान से वो विरह की भावना की अनुभूति करते थे। इस तरह से हमारे जीवन में भी हम इन चीजों को उतारने का प्रयास कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। जिस तरह से जब कोई खेल होता है हमारे सामने, तो जैसे खिलाड़ी होते हैं जिस तरह से वो खेल खेलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये खेल कैसे खेला जाता है, उनको प्रत्यक्ष देखना पड़ता है फिर हमें पता चलता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, फुटबॉल कैसे खेलते हैं। ठीक उसी तरह से जब भक्तों का व्यवहार देखते हैं, भक्तों की भक्ति देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। तो इसी वजह से भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। वो अकेले आ सकते थे लेकिन अकेले आकर फिर करते क्या, ये हम भक्त हैं ही कौन उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए अपने भक्तों को साथ में लेकर आते हैं, फिर आपस में आदान प्रदान प्रेम का जब होता है तो हम सब उसके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर सीख सकते हैं कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ये सुंदर वर्णन आता है, सभी को इन सुंदर वर्णनों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जब यहां भक्ति कर रहे हैं भगवान की, हमें किस भाव में करना चाहिए, हमें क्या पांडवों के भाव में करना चाहिए, यदुकुल के निवासियों के भाव में करना चाहिए, गोपियों के भाव में करना चाहिए, किसके भाव में करना चाहिए? इस वक्त हमें केवल एक भाव है, वो है गुरुदास। केवल हमें वैष्णवों का और सदगुरु का दास बनना है बस। इस वक्त हमें नहीं मालूम कौन सी भाव है, कौन सा भाव हमारा है, वो सही समय पर प्रकट हो जाएगा। इस वक्त हमारा काम है केवल आज्ञाकारी होना, हमारे सेवा में बहुत सिंसियर रहना, और जब ऐसी हम सेवा करेंगे भगवान की, तब धीरे 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 से हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर स्वयं हम जान पाएंगे कि कौन से भाव में हमें भक्ति करनी चाहिए। करने चाहिए की बात नहीं है, हो जाएगी। और हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जब भोजन ग्रहण करता है तो किसी को उसे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम्हारा पेट भर गया है ना, उसे खुद पता चल जाता है। किसी दूसरे आदमी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आधा भरा है, पूरा भरा है, कितना भरा है। उसी तरह से हमारा काम केवल भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना है, बस हम करते रहे। इसलिए आप गुरुदास का रस करिए, भगवान के प्रति दास से रस स्वीकार कीजिए। केवल सेवा करने के रस है, भगवान हमारे प्रभु हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं, यही हमारा रस होना चाहिए। नैतावन में बहुत सहजीय हैं लोग, जो कृत्रिम रूप से भगवान के बहुत करीब होने का विचार रखते हैं, धारणा रखते हैं। तो कोई ऐसे भी दुष्ट लोग हैं, साधु के वेश में घूमते हैं लेकिन बड़े गलत मार्गदर्शन करते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि हम आपको आपका स्वरूप दिखाएंगे, आपका भाव बताएंगे, आप भगवान के धाम में मोर हैं तो आप मोर की तरह नाचिए, तो फिर वो मोर की तरह नाचते हैं। और कोई है तो आप हंस हैं वृंदावन में, आप गाय हैं, आप गोपी हैं, आप ग्वाल बाल हैं। तो ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए केवल सेवा करना है, हरि नाम का कीर्तन करना है, अध्ययन करना है। और ऐसे करते करते हृदय में से ही भगवान हमें प्रेरित कर देंगे, उनकी सेवा में भगवान हमें स्वीकार करेंगे। तो रस आ रहा है ना आपको सेवा में, तो कैसे आ रहा है? आप कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं किस भाव में सेवा करनी है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी रस आ रहा है। तो भाव को जानने की आवश्यकता नहीं, बस सेवा करते रहना है, तो रस आते रहेगा। ये हमारा काम है। और कोई प्रश्न? किस दृष्टि से बताई गई है? केवल मिठास की दृष्टि से, रस की दृष्टि से। वैसे तो ये कोई अंक नहीं है कि इसको 50 मार्क मिले, इनको 55 मिले, इनको 60 मिले, इस भौतिक दृष्टि से नहीं। श्रेष्ठता केवल भक्ति के रस की दृष्टि से बताया जाता है, क्योंकि अलग अलग रसों में श्रेणियां होती हैं। हालांकि अलग अलग रस में जो भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं वो अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो माधुर्य रस होता है वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। उसके बाद में है वात्सल्य रस, जब हम भगवान श्री कृष्ण को माता पिता समझकर, उनको अपना पुत्र समझकर प्रेम करते हैं। और उसके बाद में आता है सख्य रस, जब हम भगवान को अपना मित्र समझते हैं। उसके बाद में आता है दास्य रस, जब हम भगवान को अपना प्रभु मानते हैं और दास रूप में उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, क्या ये बदल सकते हैं क्या? क्यों बदलना है? बदल के जा सकते हैं, चिंतामणि धाम है, वहां कोई भी हर इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को अमरस पसंद है उसके सामने संतरे का रस रखेंगे वो नहीं लेगा। सामने भी रखिए लेकिन वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए अमरस अच्छा है। लेकिन जिसको संतरे का रस पसंद है, अमरस रखे वो नहीं लेगा। आमरस पीने वाला कहेगा आमरस अच्छा है, संतरे का रस पीने वाला कहेगा संतरे का रस अच्छा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह में खुश हैं, तो बदलना चाहेंगे क्यों? यही भगवान के धाम की विशेषता है। यहां भौतिक संसार में हरेक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से दुखी है, असंतुष्ट है, इसलिए विचार हमारे मन में आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक संसार में ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी परिस्थिति में असंतुष्ट है, तो हम सोचते हैं कि शायद भगवान के भक्ति के रस में भी हम असंतुष्ट हो जाएंगे, एक रस से दूसरे रस। कोई आवश्यकता नहीं। जैसे टेलीविजन आने के बाद में भी एक भक्त बता रहे थे कि लोग केवल एक चैनल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, किसी एक चैनल में स्थिर नहीं रह सकते। पहले एक चैनल हुआ करता था, कम से कम एक चैनल बैठ के देख लेते थे, अभी 24 चैनल 50 पता नहीं कितने आ गए हैं। तो घुमाते फिरते रहते हैं, बस घुमाते रहते हैं सारा दिन भर। स्थिरता नहीं है संसार में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्थिरता है भक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।
हरे श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे हरे
बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे।